نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکته یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے تم جو آج لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں, تم لوگ آج بہت سے ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں, اور ہم انہیں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سخت ترین تباہ کن شمار کرتے تھے. یہ حدیث کا مضمون ہے بہت اہم. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تنبیہ فرما رہے ہیں لوگوں کو, آج کے زمانے کو نہیں بلکہ اس زمانے کی بات ہے جو صحابہ کا زمانہ تھا اور تابعین کا زمانہ تھا. اس وقت کی حالت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. اتنا دور نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ زمانہ, صحابی بھی موجود تھے اور تابعین موجود تھے, تو زمانے کی حالت یہ ہو گئی تھی اس زمانے کی. ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہت سے کام ایسے کر جاتے ہو, تمہارے کام بہت سے ایسے ہیں, بال سے زیادہ باریک نظر آتے ہیں, یعنی تمہیں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے, اس کی وقت ہی نہیں رہی, اس کا تمہیں احساس ہی نہیں رہا. اللہ اکبر, کے کتنے اہم ہیں یہ احکامات, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. اتنا آسانی سے لے لیا انسان نے تو تم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہو. در حقیقت فرمایا کہ یہ ہماری نظر میں ایسے تھے جو بے انتہائی تباہ کن تھے, برباد کر دینے والے تھے. تو یہ تو بہت قریب دور کی بات ہے. آج کا زمانہ اگر ہم دیکھیں, اللہ معاف فرمائے, تو یہ تو کہیں پہنچ گیا حالات. کون سی ایسی حکم ہے اللہ اللہ کے رسول کا جو ہمارے لیے کھیل نہیں بن گیا, مذاق نہیں بن گیا؟ فرائض سے لے کے نوافل تک, سنن تک, واجبات تک, حرام حلال, تمام کا تمام جو ہے وہ ہماری نگاہوں میں سے بالکل گر چکا. نماز جیسا فریضہ جو اتنا اہم ہے امت پر, اگر اسی کو ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کون سا उम्मत में इस वक्त घर होगा जहां नमाज को तर्क नहीं किया जाता, नमाज को छोड़ा नहीं जाता। कोई अहमियत इतने बड़े फरीजे की हमारी नजर में नहीं है जहां तक हराम चीजों का ताल्लुक है। वाज़ह अहकाम जिसके मुयस्सर है और मिलते हैं हदीस में, वो तो हम वक्त की ज़रूरत समझते हैं, उसके बगैर तो कहते हमारे गुजारे नहीं होंगे, हमने दुनिया में रहना है। कौन सा घर ऐसा होगा आज जिसमें इसकी कोई मौकत होगी? सोचें जरा आप कैसा ज़माना है, उस ज़माने का यह हाल था तो इस ज़माने का यह हाल है। लेकिन हकीकत जो है अनस रदिल्लाह फरमाते हैं कि ये मामूली चीज़ नहीं है, ये ऐसा हो जाना ये तो बे इंतहा तबाही का बायस है और बर्बादी का बायस इंसान के। हम मुतमईन बैठे हैं, उस घर में बहुत मुतमईन है, जो हराम भी है, गैर शरी बातें हैं, सब कुछ ख़त्म है, कोई नमाज पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, कोई अपनी मर्जी से पढ़ता है, कोई जमात में जा कर पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, कहने पर मजाक उड़ाया जाता है, बुरा किया जाता है कि हराम से रोको तो उस पर कोई नहीं सुनता, अपने नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, घर वाले नहीं सुनते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हमें क़यामत की निशानी बताएं, क़यामत बताएं कब आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी निशानी बयान फरमाई थी। आज के बुजुर्गों में कुछ कहते हैं और फरमाते हैं इस दौर से कि अब कोई निशानी बाकी नहीं, कम अज़ कम उसकी कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो, बल्कि बाज़ बुज़ुर्ग तो ये कहते हैं कि ज़हूर हो गया है, कि जो भी निशानी बताई थी वो आ चुकी हैं सारी। इसमें सबसे बड़ी निशानी जो थी वो ये थी कि पूरी उम्मत के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, इतना भयानक इख्तलाफ होगा कि जोड़ने का कोई नाम नहीं होगा उस वक्त उम्मत में, फितनों का इतना बड़ा अरूज होगा जिसकी मिसाल हदीस में दी है। बड़ी गौर तरफ बात है दोस्तों, ये सोचने नहीं बात है, फितनों का जो मिसाल दी है हदीस में वो ये है कि फितने उस दौर में ऐसे होंगे जैसे कि समुद्र की लहरें। अल्लाह मतलब क्या इसका, कभी आप समंदर के किनारे जाकर देखें, एक लहर आती है ऊंची उठती है और वो ऊंची उठ के चली जाती है तो फिर पिछली लहर जो आती है उससे भी ऊंची उठ के आती है, आप कभी ठहर के देखें उससे आती है, तो बताते हैं कि इस तरह होंगे फितने कि एक फितना आएगा वो कहेंगे सबसे बड़ा फितना है, लेकिन पीछे जो फितना आएगा वो उससे भी बड़ा फितना होगा। और फितनों के ज़हूर हो रहे होंगे, इमाम मेहंदी का ज़हूर भी जो है इन्हीं फितनों के सबब से होगा। फितना क्या चीज़ है ये भी सुन लें, फितना उसको कहा जाता है कि जिससे अल्लाह के अज़ाब इंसान पर उतरते हैं। तो जब ऐसा दौर आ जाएगा, अगर आप और मैं गौर करें तो यकीनन इसमें से कोई निशानी ऐसी मौजूद नहीं है। घर घर घर, बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क, हुक्मरान बादशाह, जो भी आप देख रहे हैं इस वक्त, नाम का दीन और नाम की रवायत मौजूद है। जिसको चाहे आदमी हराम कर ले, जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे। हदीस में इस जमाने के बारे में कहा जाता है कि हर इंसान का ऐसा हाल हो जाएगा कि सुबह मोमिन है तो शाम को काफिर है, शाम को मोमिन तो सुबह काफिर है। कहेगा नहीं खड़ो कि मैं काफिर हूँ, बुद्ध को पूछता हूँ, नहीं, उसके आमाल इस चीज़ की गवाही देंगे, उसको उसके अमाल इस किस्म के होंगे जो कुफरी अमाल होंगे सारे, उसका कंट्रोल नहीं होगा किसी पर, अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकेगा, समझाएगा नहीं समझेगी, बताएगा उसको नहीं बताएगी, बहनों को समझाएगा, माओ को समझाएगा, औलाद को समझाएगा, यानी इतने अख्तलाफ हो जाएगा उम्मत के अंदर कि एक ही घर के अंदर कई फिरके के लोग होंगे, कई फिरके के लोग होंगे और उनमें इतनी ज़बरदस्त दुश्मनी होगी can't sit together. They can't talk. एक ही घर के अंदर तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये गलत हो गया, तुम गलत हो गए, फला गलत है, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त अजाब की एक अजीब नौयत होगी इंसान पर, अजीब गरीब अजाब होंगे। वो अजाब कैसे होंगे के बारे में तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि वो अजाब तो मैं नबी पाक के सदके से इस उम्मत पे नहीं दूंगा जो पिछली उम्मत पे देता था। पिछली उम्मत पे अजाब जो है अल्लाह ने वो हमें कुरान हकीम में है हर नबी की उम्मत के अजाब बताए हैं और फरमाया कि ये अजाब जो उन उम्मतों को देता था वो मिटाने के लिए देता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा अजाब हो और वो उम्मत सर्वाइव कर जाए या दोबारा आ जाए। वो अजाब महसूस होते थे जड़ से निकाल देता था, खत्म कर देता उस उम्मत को, तहनस हो जाती थी उम्मत, फिर दूसरा आता था। लेकिन यहां ये होगा अल्लाह अल्लाह कि ऐसा अजाम नहीं दूंगा, बल इसको मिटाऊंगा नहीं, इस उम्मत को मिटाऊंगा नहीं, अल्लाह मिटाऊंगा नहीं इस उम्मत को। तो ये एक बहुत और तरफ दोस्तों बात है जिंदगी की, कैसे हालात हों इंसान के साथ, तो क्या हालात होंगे, किस तरह इंसान वो सर्वाइव करता होगा, क्या उसकी जिंदगी होगी और कौन से फितने में वो इंसान मुब्तला होगा उसको पता भी नहीं होगा। अजीब बेकैफी का आलम होगा, अफरा तफरी का आलम होगा, कहीं से कोई खबर आ रही होगी, कहीं से कोई खबर आ रही होगी, कहीं से कुछ पता चल रहा होगा। अभी 5 मिनट बैठ के आप दुनिया पे तजिया करें तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। आप लोग देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, आधा घंटा आप इस दुनिया पे जरा कंसीडर करें तो आदमी हैरान हो जाए कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। और देखने वाला समझता है कि मैं महफूज हूँ, मैं बचा हूँ, हालांकि वो खुद भी उससे बड़े फितने में मुब्तला हो चुके हैं खुद भी। तो ऐसी सूरत में इंसान का जो बचना है बड़ा मुश्किल है। सैलाब आ जाए तो सैलाब से आदमी कैसे निकले। अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि इस उम्मत पर जो है मिटाऊंगा नहीं इसको, तो क्या करेंगे फिर? ला तरजून फरमाया कि इनको जो मैं अजाब दूंगा वो अजाब मेरे ऐसे होंगे, फितना तो अजाब लेकर आते हैं और फितने मौजूद हैं, फितने हैं सारे, तो उनको मैं अजाब जो दूंगा वो क्या होगा? ला तरजून उसका मैं उनका जो रंग होगा हिसाब देने क्या मिटाऊंगा नहीं, क्या है मैं अजाब इस तरह दूंगा कि वो वापस मेरी तरफ आ जाए। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अल्लाह पाक ने रास्ता खोला हमारा, इतने भयानक वक्त के ऊपर जब ये हालात होंगे तो मैंने मुख्तसर आपको बताया, अगर उसको हम हदीसों को पढ़ें हम सुने आदमी के रोंटे खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त जब ये हालत होगी पूरी उम्मत की, इंसानों की घर घर ये हालत होगी, एक एक इंसान इंडिविजुअल्स ग्रुप नहीं होगा, हर इंफरादी आदमी अपने फितर में मुबतला होगा, मेरा आप होगा, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, बड़े रंग के बताया ना, एक लहर के बाद दूसरी लहर, इंसान हर आदमी डिफरेंट मतलब होगा। और इस हालत के अंदर जाहिर है दुनिया से चला जाना वो तो एक बहुत ही बड़ा मौजूद अजाब इंसान को होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन पे जो कैफियत आएंगे फितने आएंगे, लेकिन वो अजाब ऐसे होंगे तो अजाब की शक्ल में आप देख ही रहे हैं किस कस्म हो रहे हैं, क्या थोड़ी देर के बाद हिसाब लगा लेंगे कितने कत्ल हो रहे हैं दुनिया के अंदर, कितने लोग मारे जा रहे हैं और कैसे मारे जा रहे हैं। एक गेम है, इंसान को मार देना क्या है, एक गेम है, एक आप ये समझ एक खेल बन गया है, बहुत मामूली चीज़ है, बड़े आराम से कह देते हैं इतने लाख मर गए, इतने हजार मर गए, इतने चीज़ मर गए, इतना मर गए, वजह से अल्लाह के हुक्म की कोई चीज़ तो होती नहीं है। ये सब उन्हीं फितनों की वजह से जो अनस रदी अल्लाह ताला अर्शाद फरमाते हैं और बढ़ते रहेंगे। आज हम इस तरह बैठे हैं कल का पता नहीं है हमें, ये भी सुन लें आप, और ये भी एक बात सुन लें आप कि इस हालत में इंसान अगर ये समझता है कि मैं शायद इस तरह से बच जाऊंगा या चलो आज ही की बात है, मतलब खबर आती है, पता चलता रहता है, आज मेरी बेटी धैर्य हो गया, मेरा बेटा धैर्य हो जाए, रोजाना मेरे तख्ते खबरें पहुंचती हैं। धैर्य होना, आप अंदाजा लगाएं हमारे घरों में से बच्चों का, मामूली चीज है, क्या हाल होता है उस घर का मुझे बताएं। मैं रोज खबर आती है, आज भी कभी खबर आती है, लेकिन क्योंकि इतने हम खुद डूब चुके हैं कि उसको फिर आस्ते आस्ते हम भूल जाते हैं, चलो जी क्या है हम, हमें क्या, हम ठीक है जीवन। अब ऐसी हाल में याद रखना, हम मगर ये सोचें जी हम हिजरत कर जाएं बच जाएंगे, तो एक चीज सोच लें, हिजरत करेंगे कहाँ, अल्लाह ताला तमाम दरवाजों, कुछ जगह ही नहीं है, बता दें मुझे जिस जगह आप सेलेक्ट करेंगे उससे ज्यादा फितना वहां मौजूद है। सोच के देखें आधा घंटे के, यार उस मुल्क में चले जाते हैं या उस उस जगह चले जाते हैं या वहां चले जाते हैं, आप जाके देख लें, बल्कि वहां से जाने के बाद फिर कहेंगे यार वो जगह अच्छी थी जहां से हम आए, कितना बड़ा फितने का जमाना है। तो ऐसे हालत में अव्वल तो ये कि कोई हिजरत का माहौल ही खत्म हो गया, हिजरत किस जाए, कौन से मुल्क में जाए, कौन सी जगह पे जाए, कहाँ ईमान है, कहाँ महफूज है, कहाँ सही ईमान है, यहाँ और रंग का बीमारी है, और रंग की बीमारी होगी, और रंग की बीमारी होगी, कहीं शरीयत और सुन्नत का कोई रंग नहीं नजर आएगा। फिर आदमी घबरा के मुतमिन होकर फिर चलो यार देखी जाए, उसमें डूब जाता है, आंखें फिर बंद कर लेते हैं, और फिर नतीजा क्या होता है कि मौत तो आनी आनी, बस मौत तो नहीं रुकनी, तो पहुँचनी है, अल्लाह माफ़ करे तो किस हालत में सावधानी से जाता है, फिक्र तो पैदा कर ही आते हैं, सोचे हमारा हश्र क्या होगा, नाम दुनिया के ना आखिरत के, अगर अभी सोच लें कि भाई क्या है, लेकिन बजाय इन चीज़ों के अगर आदमी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह ताला की क़यामत तक अर्जुन का दरवाज़ा खुला हुआ है, कहो मेरी तरफ पलटो, जहाँ भी होगा फिर अल्लाह ताला उसको महफूज कर लेता है, महफूज कर लेता है, वादा अल्लाह ताला हर औरत और मर्द को। अगर आज हम बचना चाहते हैं फितनों से, फितने गिर रहे हैं हमारे पर, तो अल्लाह ने दरवाज़ा खोला है हमारे लिए, तबाह नहीं करेगा, बल्कि क्या है हमें चांस रखी है, वो कौन सी चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए रखी हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इरशाद फरमाया उससे मेरी उम्मत बचती चली जाएगी, हर फितने से बच जाएगी, क्यों, अल्लाह ने उसका वादा किया है कि क़यामत तक मैं बचाऊँगा, वो क्या चीज़ है, तौबा और ज़िक्र अल्लाह, बहुत कम लोग होंगे इन फितनों के ज़माने में, याद रखें बहुत कम लोग होंगे वो मर्द और औरत जिनको तौबा नसीब हो जाएगी, कुछ तरीन इंसान होंगे जिनकी फरिश्तों आसमानों के फरिश्तों की ज़ियारतों को उतरेंगे, जो इस पैगाम को समझ जाएंगे कि आज फितने से बचने का मेरे लिए ना घर है, ना मस्जिद है, ना बाहर है, ना इधर है, ना उधर है, ना कोई मुल्क है, तो एक ही चीज़ है जिससे बच सकता हूँ, वो क्या है, जो अल्लाह अल्लाह के साथ बैठ के इंसान सच्ची तौबा कर ले, सच्ची तौबा, कितना अच्छा लाज है, किसी को कहे ना तौबा कर ले, मतलब कितनी देर माँ को कहे ना अपने कि जी मैं आदमी शेख समझता हूँ, कुरान ने बताया हम फितनों से बच जाएंगे, तौबा कर ले, चल चल तू कर ले, मैंने दी को कहे ना आप देखता हूँ कितनी बीवी तैयार करता हूँ, आप कितना तैयार करते हैं, क्योंकि हमें एहसास नहीं ना, तो ये ऐसी चीज़ है कि अगर हम बचाना चाहते हैं हर बच्चे को इस तरफ ले आए इंसान, घर के हर फर्द को इस तरफ ले आए कि ये जो दौर है इमाम मेहंदी का दौर है, और 30 दज्जाल निकलेंगे, दज्जाल एक वो दज्जाल अकबर होगा, एक क्या होगा दज्जाल अकबर जिससे फाइट की जाएगी, लेकिन 30 दज्जाल होंगे, अब उनकी डिस्क्रिप्शन तो मैं नहीं देना चाहता, लेकिन याद रखें वो उम्मत में निकल चुके होंगे, और हमने अगर फिक्र नहीं किया अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, और नहीं सोचा कि भाई, और अल्लाह ताला इसका इंतजाम रखेगा, तौबा कराने के लिए अल्लाह ताला अपने किसी दोस्त को ज़रूर भेजेगा उस जगह पर, ضرور بہت ضرور انتظامات ہوں گے, خود اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا, کیونکہ یہ قیامت تک کا اللہ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ جو ان کا قرآن کے اندر. لیکن جس وقت انسان کا احساس جاگے گا کہ بھائی واقعی اگر میں نے توبہ کر لی تو گھر میں میری بیوی نے نہیں کی, میرے بچے نے نہیں کی, میری ماں نے نہیں کی, تو فتنوں تو اسی طرح ڈوبتے چلے جائیں گے. میری اولاد جو ہوگی وہ تو شیطان پیدا ہوگی, بغیر توبہ کے جو بیوی بچے پیدا کرے گی وہ تو شیطان پیدا کرے گی, انسان تھوڑی پیدا ہوں گے, تو اس کی قوم پیدا ہو رہی ہوگی. جنہیں تھوڑے دنوں کے بعد 15-20 سال کو دیر نہیں لگتی گزرتے, آپ کے اور میری آنکھوں کے سامنے ان کے کارنامے آنا شروع ہو جائیں گے انسان. لیکن وہی کرے گا, میں نے بتایا نا ایسے انسان پر فرشتے فخر کریں گے اس زمانے کے اندر, اور کتنا بڑا انسان ہے جس نے اتنی بڑی مجاہدہ کی, اس نے اس کو فکر کوئی نہیں تھی سوائے اس کے اپنی فیملی کی, سب سے بڑی فکر اس کی پیسوں کی نہیں تھی, دولت کی نہیں تھی, وہ چاہتا تھا کہ پہلے کسی طریقے سے توبہ اختیار کر لے اور توبہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے. آ جائے کسی کو بھائی یہ فکر, کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس رستے تک بھی پہنچا دیا تو ہم نے بھی اس کو ایک رواج بنا لیا جی, کیا پیری مریدی بس شیخ, یہ وہ راستہ نہیں ہے دوست, یہ تو بہت بڑا راستہ ہے, بہت بڑا اللہ نے راستہ دیا ہے ایسی کر کو. ایک حدیث دیکھیں کتنی بڑی ہے, اس کا مفہوم ایسا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ذکر کی طرف جو بلا رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہیں مصائب سے بچانا چاہتا ہوں, اس سے بڑا اللہ کہتا ذکر کی طرف جو میں تمہیں بلا رہا ہوں میں تمہیں مذاہب سے بچانا چاہتا ہوں, تمہیں کیا معلوم اللہ کے ذکر سے تمہاری کتنی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں, کتنی بلاؤں سے تم بچ جاتے ہیں, تم نہیں جانتے کہ کتنی بلائیں اور فتنے ہیں اس دنیا کے اندر, اور کیا عجیب جی فتنے, فتنے اسی چیز کا نام نہیں, میرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا چلتے چلتے کوئی ایسی بیماری آ گئی, فتنے نہیں ہیں, فتنے تو یہ ہے کہ ایمان نہیں رہے گا انسان کے پاس, اس کا ہر کام ایسا ہوگا جو ایمان پر نہیں ہوگا, سب سے بڑا فطرت اصل یہ ہوگا, وہ چلتا پھرتا روبوٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا کہ بھائی اس کا مال کم ہو گیا, اس کی دکان لے رہا تھا دکان نہیں بکی, یہ مال بکنا تھا یہ نہیں بکا, فلاں چیز ہو گئی تھی یہ نہیں ہوئی, نوکری ملنی تھی نوکری نہیں ہو رہی, بھائی بڑا نقصان ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا دیکھو یار کتنا نقصان ہو گیا, یہ تھوڑی فتنہ ہوگا, فتنہ تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا, وہ فتنے کیا ہیں, دائمی عذاب کے حامل ہوں گے وہ فتنے جو ہوں گے, ایمان کے حالت سے دنیا کو نہیں جانے دے گا وہ فتنہ, اتنا زبردست فتنہ ہوگا, ایمان کے حالت سے اس دنیا سے نہیں جانے دے گا, یہیں اس کو ختم کر دے گا, بے ایمان بنا کے اس کو ملے گا اللہ تعالیٰ. اتنی زبردست اس وقت ہمیں ضرورت ہے پروٹیکشن کی, یاد رکھو اتنی زبردست, کہ اس سے علاوہ دنیا میں کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے, رزق مال اولاد تو اللہ نے وعدہ کیے میں تمہیں دوں گا, لیکن یہ جو اختیار دیے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کہ توبہ تم کرو, اللہ کا ذکر تم کرو, جاؤ کسی میرے دوست کے پاس پہنچو, اپنی اصلاح کرو, تو کوئی زمانہ بھی پھر کیا ہے ہم پہ اثر نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت فرماتے ہیں, اس کی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے, اس پہ جو آزمائشیں آئیں گی ایمان پہ کھڑے ہونے کی, جیسے میں کل بتا رہا تھا جو آزمائشیں آئیں گی جس کا نام آخر سٹیج جو ولایت کی استقامت ہے, کل میں عرض کی تھا نا آپ سے, استقامت دو چیزیں استقامت کے معاملے رکاوٹ ڈالتی ہیں, ایک خود انسان کا نفس اور ایک دنیا کے حالات. جس وقت بھی آدمی دین پہ چلتا ہے تو اس کی استقامت کو پابندی کو دنیا ختم کرتی ہے, دھمکاتی ہے لڑتی ہے اور تانے دیتی ہے مصیبتیں ڈالتی ہے پریشانی پیدا کرتی ہے اور ہر طرف سے مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں اور جناب اعلیٰ اس کا ایسی تیسی کر کے رکھ دیتی ہے دنیا. اور کوئی انسان دین پہ چلنا شروع کرتا ہے کسی نے پریکٹس کرنا چاہیے کوئی اور مرد تو سب سے پہلے ایک کام شروع ہوگا, ڈرانا دھمکانا تڑی دینا مصیبت ڈالنا تانے دینا ستائش کرنا برے حال اس کا کر دیتے ہیں. تو اس پر سنت موجود ہے, نبی اکرم کیا تھے وہ مثال بن کر ہمارے لیے آئے تھے, اس استقامت کی آپ نے ایک نہیں کئی مثالیں چھوڑی ہیں, یاد رکھیں عملاً اور قولاً آپ نے بتایا ہے کہ یہ دین کا سب سے بڑا جز ہے جو استقامت, جس سے تم بچو گے فتنے کے دور میں, وہ کیا چیز ہوگی انسان کی استقامت ہوگی دین کے پر. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو ذکر کی توفیق دی نا, आप इस पर इस्तकामत क्या होगी आपकी कि कोई मजलिस भी बगैर किसी वजह के आप नहीं छोड़ सकते। इस्तकामत इस अल्लाह की इस नेमत की कि हमें अल्लाह का जिक्र तौफीक दिया है। मेरी क्या जरूरत है कि मैं यहाँ बैठ के जिक्र कराऊँ आपको, आप जिक्र करें। मेरी क्या जरूरत है कि सुबह के मैं जिक्र कर लूँ। मेरी क्या जरूरत है कि मक्की मस्जिद में चला जाऊँ, फला मस्जिद में चला जाऊँ, पाँच दिन जिक्र कर लूँ। ये सारे अहतमाम जो किए जाते हैं किसके तरफ, अल्लाह की तरफ से किए जाते हैं। अगर उसको हम ये समझ के कहेंगे जी तो साहब वहाँ जिक्र कराएंगे, वहाँ कराएंगे, यहाँ कराएंगे, ये बिल्कुल धोखा समझें। इससे बड़ा धोखा कोई नहीं शैतान का, ये एक और फितना है। बल्कि ये समझें कि अल्लाह सुभान व तआला ने मेरे लिए इंतज़ाम किया है और मुझे इस पर इस्तकामत हासिल करनी है। क्योंकि हर मजलिस ऐसी होगी जो मुझे एक नए फितने से बचाएगी। और जिसने इसको ढीला लिया, चले जाते हैं जी नहीं हम मक्की में चले जाएंगे, जी फना चले जाएंगे, जब तक कोई ऐसा शरी उजर ना हो मौजूद कि काम पे जा रहे हैं नहीं आ सकते, टेलीफोन पे सुनने की कोशिश करें, बीमार हो गए आप नहीं आ सकते, ये दो ही वजूहत हैं और तो कोई नहीं। ये तो कोई वजह नहीं, चलो आज बैठ जाए चाय पीते हैं, फला मेहमान आ गया, सवाल ही पैदा होता। ये इतनी बड़ी चीज़ है, इस्तकामत की बात कर रहा हूँ। जिसने इस तरीके से इस मजलिस को पकड़ा, औरत ने मर्द ने, औरतें तो वो जो सुनती हैं और मर्द वो जो पहुंचते हैं, जिनको इजाजत है, जिनको इजाजत नहीं है पहुंचने की, उनके लिए मौजूद है ये हिस्सा जो है उस पर सुनना। इतनी बड़ी इस्तकामत इस पर होनी चाहिए कि एक मजलिस भी जो इंसान की ख़त्म ना हो। और जिसकी मजलिस ख़त्म होती हैं अल्लाह के नज़दीक वो नामकबूल इंसान है, वो फितने के अंदर गर्क हुआ है, इसका कोई जिक्र ऐसा कबूल नहीं हो रहा, कोई बैत कबूल नहीं हो रही, ये इस्तेज़ा कर रहा है दीन के साथ। मुस्तकीम एक मामूली चीज तो नहीं है। इस्तकामत फ़राइज़ पर नहीं है, इस्तकामत नवाफिल पर है, वाजिब इस पर है, सुनन पर है। आज आप आए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तोबा की, तोबा करने के बाद आपका रुख बदल गया, हयत बदल गई, आपका चेहरा जिस्म बदल गया, तो क़यामत तक आपका फिर वही हुलिया रहना चाहिए। इसका नाम इस्तकामत, ऐसी इस्तकामत इसका नाम कहते हैं। आप आए आपने तोबा की, हराम नहीं खाऊंगा, क़यामत तक उस पर इस्तकामत हो के आप हराम नहीं खाएंगे, मैं गाने बजाने नहीं सुनूंगा। ये है इस्तकामत। इस इस्तकामत अल्लाह ने वादा किया है कि मैं दुनिया के अंदर इसको वली बना देता हूं। आखिरत को दर्जे हैं जो है अल्लाह तआला जानता है। ये इस्तकामत नहीं है। आज इस फिक्र में आ गए तो मेन चीज दो है इस्तकामत की जो बचाने वाले, एक क्या सोहबत शेख और जिक्र अल्लाह। जो सच्चा आदमी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, पक्का आदमी होगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमत और तहदीस से नेमत के तौर पर बात करता हूं कि मैंने इस्तकामत को पकड़ा है। बज्जूस जब तक बेहोश ना हो जाए मस्जिद से नहीं जाता अल्लाह के फजल से। आप देखते होंगे मेरी हालत दीवानों की तरह, क्यों, क्या है ही नहीं रास्ता और कोई रास्ता ही कोई। अगर हमने इस्तकामत नहीं ली हासिल की, याद रखें हमने जिक्र सीख लिया, हमने शेख कहा तो बैत हो गए, लेकिन इस्तकामत नहीं है, मैंने बताया दोनों चीजें फेल हो जाती हैं। सबसे बड़ा ताल्लुक जो है इस्तकामत का है कि अल्लाह ताला ने कहता है कि मैं तो तुम्हें जिक्र की दावत दे रहा हूं, जिक्र बुलाऊ मसाहिब से बचाने के लिए, और तू नखरे कर रहे तो उसी चीज को छोड़ रहे, और बिना उजर छोड़ रहे, नींद की वजह से छोड़ रहा है, सुस्ती की वजह से छोड़ रहा है, बस वैसी उंगली की वजह से छोड़ रहा है, और बहानों से छोड़ रहा है, और कोई मतलब ही नहीं छोड़ रहा है। इस पे तो अगर जितने भी मेहनत करनी पड़े, मुजाहिदा करना पड़े, उसी कदर अल्लाह उसको मकबूल करते हैं जितना नफ्स को मार के आएगा। अच्छा इसमें बात रखना, इसमें फिर अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कि दीन का वही मिसाल है कि आला दर्जे की जमाने के अंदर है शेख के साथ मजलिस करना और जिक्र करना, आला दर्जे का मुजाहिदा है। मैं आपको बता रहा हूँ किस वजह से, बनजर इस्तकामत के, वरना मुजाहिदा नहीं बनता, वरना मुजाहिदा नहीं बनेगा। ये बनजर इस्तकामत के मुजाहिदा बनता है, इसमें इस्तकामत क्यों मुजाहिदा नहीं, तो फिर वो ढकोसला है, आगे चले गए ये तो फिर उस पर असर ही कुछ नहीं होगा, अंदर से बदलेगा ही नहीं, रिया मौजूद होगी, ड्रामे मौजूद होंगे उसके, सबको पता है ड्रामा कर रहे, नमाज पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, जो कुछ कर ड्रामा कर रहे, सब पता चलता है, ड्रामा रिया नहीं कर सकती। दो सिलेक्शन है हमारे पास दोस्तों, या तो ये फितनों में गर्क हो जाए इंसान और दुनिया से कहा जाता है हजारों किस्म के रंग खोले दुनिया, बच्चों बहुत रंग खोले, या एक ये है कि संभल जाए, खुद भी बचे अपने जानने वालों को भी बचाए उससे। उसके लिए रास्ता दो ही है, सोहबत शेख और जिक्रुल्लाह, उस पर इस्तकामत। यानी सुबह से लेकर शाम तक हर चीज को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सोहबत शेख को नहीं छोड़ेंगे शाम को। अगर मस्जिद चल रही है हमने पहुंचना है, बेशक कुछ हो जाए हमने जाना ही जाना है। बावजूद उसके सख्त बीमार है और खुद हम जानते हैं, और उस पर भी इतना मुजाहिदा, जितनी मेहनत कोशिश करके आदमी इन चीजों को पकड़ेगा उसी दर्जे अल्लाह के यहां मकबूल होना शुरू हो जाएगा, और महफूज भी होगा और फितनों से भी बचेगा। यह ना तो ये इसलिए थोड़ी है कि यह मैं कोई यहाँ मजलिस थोड़ी कर रहा हूँ, कि कवाली थोड़ी करता हूँ, आगे जी बस चले गए। ये तो एक बड़ी अल्लाह के करम और नवाजिश की मजलिस है, अल्लाह तआला और उसका बड़े करम और नवाजिश है कि उसने एक ऐसी जगह पे हमें रखा है कि सारे फितनों से महफूज करता है। लेकिन उनको ये जो आपको शीट वगैरह दी जाती है, इस्तकामत की है। काटा तो सवाल ही पैदा उसमें हो, खटे के गुंजाइश उसमें, इस्तकामत ही हर मजलिस में कहीं भी हो रही है, जहां पहुंचना है पहुंचना है। ये नहीं सुबह कर ली शाम की, नहीं नहीं बिल्कुल, जो सुबह गई मजलिस सुबह गई, उसके बाद दिन कितना गुजारा हमने, और कितने फितने आए, उनकी फितनों का दौर है ये, मैंने बता दिया फितने कैसे बरस रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। लाखों फितने हमारे से चिपक गए होंगे, चिमट गए होंगे हमारे से, और उनका ताल्लुक किसे, हमारे ईमान को खाने का ताल्लुक है, ईमान को खा रहे होंगे। अगर शाम को हम ना बैठे मजलिस में, कितनी बहुतास से अल्लाह पाक ने जिक्र करा रहे हैं, ये देखें कितनी कसरत से हम मजलिस में जिक्र करते हैं, करनी चाहिए इस्तकामत नहीं, इस चीज को याद रखें। ये नाम है अल्लाह पाक ने, इससे फिर जो है फितनों के जमानों में जो बचेगा आदमी, क्या बचेगा, अल्लाह के जिक्र से बचेगा, उन चीजों से बचेगा जो बताए जाए, अब उस तखामत के साथ तौबा, तौबा तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने दोस्तों में तासीर ही ये रखी है कि जो सच्चे नीयत से आता है एक दिन गर्क हो जाता है तौबा के अंदर। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी, अजीब शेर किसी ने कहा, और यह हकीकत है। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, दौर तो वही चल रहा है अल्लाह वालों को, वही रंग है, क्यामत तक ही रंग हो अल्लाह वालों को, नाम बदलते जाएंगे, बायजीद का नाम बदल देगा, लेकिन जो और आएंगे उनकी जगह पे सब चीज छुटाते जाएंगे, रंग यही होगा, देने वाला अल्लाह की जात है। वली तो वली होता है ना, फिर दोस्त तो दोस्त होता है, जो उसने काम करना है तो करना है। जैसे एक आदमी कपड़े रंगता है, मेरी दुकान में रंग साज हूं, मैं चला गया मेरा बेटा आ गया, तो वो भी कपड़े वैसे ही रंगेगा, नहीं रंगेगा, ये नहीं रंगेगा, वही रंगेगा, हाँ वो दे वो गया, उसका बेटा है उसी दुकान पे, वो आ गया वही रंगेगा। तो अल्लाह ताला हर वली को ही वो रंग देता है, जो मेन पर्पज उनका क्या है वो वैसे होता है, मकामात डिफरेंट, लेकिन जो मेन पर्पज है असरात उन्हें वही होते हैं, असरात वही होते हैं, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह नजर पड़ी उसकी दुनिया बदली। ये रंग तो अल्लाह ताला अपने हर वली को देते हैं, वरना दुनिया के अंदर चले कैसे काम, पता है इतनी सख्त दुनिया में किसके दिल बदल सकते हैं। निगाह वली में अजब तास्त, निगाह वली में बदलते जमाने की तकदीर देखी, निगाह वली में तासीर देखी, बदलते जमाने की तकदीर। अब्दुल्ला बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह गुजर रहे थे, एक आदमी सख्त लफर किस्म का आदमी था, और उसने ढम ढमा कर रहा अपने वो गाने बजाने बजा रहा, उनको देख के और शुरू हो गया, वो आए रहे थे, जब नज़दीक आया आपने तवज्जा फरमाई और फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतनी कहा, वो गाने वाने सब भूल गया, उसे वक्त तोड़ दिया, सब पीछे पीछे भागता है खान का, तो उनके क्या बात क्यों आया, कदम में गिर गया, हजरत तो रहा ही कुछ नहीं, तौबा करा दें मुझे। अब बहुत अजल खुल्फा में गुजरे अब भाई बस्ता में, तौबा ऐसी चीज़ है, तौबा मेरी और आपकी, हमने तौबा की है, खुदा की किस्म सच्ची तौबा की होती पता नहीं क्या रंग अल्लाह हमें इस वक्त देता, अल्लाह का अपने जिक्र का अपने नाम का, इस्तकामत ही रखी ना मैंने चीज़ों पर। उन्हीं बाजस्तियों की बात में एक मुझे और याद आता है, पड़ोस में था एक गैर मुस्लिम था, तो बच्चा उसका बहुत रोता था, आप गए रात का तो वक्त था, उन्होंने अपना चिराग उठाया उनके घर चले गए, बच्चे को देखो उनसे अंदर गए, उस चिराग के साथ अंदर तो अंधेरा था, तो उनकी बीवी बैठी थी, जो से अंदर गया बच्चा एकदम मजे खामोश सो गया, खनाटे भरने लगा, वो चले गए। तुम जो खामी दे उसके आज अजीब चीज़ देगी, जो हमारा पड़ोसी है वो आया चिराग लेकर, तो बहुत कसर किस्म के वो गैर मजहब आदमी थे, चिराग लेकर अंदर आया तो मैंने अजीब चीज़ देखी, बच्चे तो इतना सुकून मिला के वो तो आराम से खनाटे मारने लगा। उसने कहा अल्लाह की बंदी अब इंतजार किस चीज़ का है, जिसके घर में एक आदमी चिराग लेके आ गया तो अंधेरा कैसा, उठ हम जाके इस्लाम कबूल करते हैं। तो ये तो क़यामत तक चलेगा। हिम्मत हमें करनी है, कहीं हयात हम फितना में गर्क हो जाएं और कबूल कर लेंगे, हमने तो बस कोई पता नहीं ईमान मिलता है या नहीं मिलता, ड्रामा चल रहा है। शक्ल सूरत से नहीं है मुसलमान नहीं होता आदमी, कहाँ से होता है? दिल से होता है। अब क्या पता कि मेरे दिल में कितने कुफर बने हुए और क्या क्या हरकतें हैं, मुझे क्या पता। शक्ल तो आज तो सब बनाएंगे आदमी, कौन सी देर लगती है शक्ल सूरत बनाने में और जनाब वाला सब ड्रामे करने को देर लगती है, वो भी 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अंदर बनाने में बहुत देर लगती है। तो अल्लाह ताला अंदर से काम देखता है कि मुसलमान है भी या नहीं है, और जिसके जो फितनों में गिरा होगा, अजाबों में गिरा होगा, तो फितने कभी इंसान को ईमान के हाथ नहीं रहते, किसी औरत को मर्तबा नहीं करते। एक नज़र मार ले अपने घर के अंदर आदमी बड़े आराम से, वो बेटी क्या कर रही है, वो बेटा क्या कर रहा है, फलां वो क्या कर रहा है, फलां वो क्या कर रहा है, 5 मिनट बैठ के तजिया करके सोचे कि कितने कितने ईमान पे ये लोग चल रहे हैं और कैसे कैसे हराम को हलाल किया है, किसको कुछ किया है, किसको क्या हिसाब चल रहा है, खाना पीना हराम हलाल क्या हो रहा है। 5 मिनट सोच के मराको गर्मी गर्म इंसान को पता बाहर क्या जाऊँ, और फिर अपनी तब सोचे फिर सोच मैं ईमान के साथ जाऊँगा। मैं ये हदीसें कहूँगी इस पर अनसदिल्ला ने फरमाया, जिस काम को तुम बाल के बराबर समझते हो बारीक, ये तो भाई तबाहकुन चीज़ें थी, बर्बाद कर देने वाली, इन पर तो अजाब नाजिल होते थे। तो बस ये बहुत बड़ी तंबीह है इस हदीस में, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इन हालात को समझें, अपने हालातों को हम सही करें, और एक इंसान भी इस अल्लाह की तरफ से जो सच्चा इस्तकामत के साथ तौबा को पढ़ करता है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब है। प्रायोरिटी हमारी किस चीज़ पर है? अपने दीन को बचाने पर है, दीन को बचाना। दीन किसी लड़ाई से नहीं बचाना होता, जंगों से नहीं बचाना होता, ये तो अल्लाह बंदे का मामला है। वो तौबा करने में लड़ाई करनी पड़ती है, किसी बंदूकें मारनी पड़ती हैं, कुछ भी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी नहीं, कोई कुछ है, हमने अपना ताल्लुक पैदा करना अल्लाह से, हमने तो अल्लाह का रुजू करना है। अल्लाह कहता आओ तौबा करो मुझसे, लाख तर्जुमा खुद कहे तमाम फितनों से बचा लूँगा, इतनी बड़े फितने में रहे तेरे पे कुछ असर नहीं करेंगे, तो आज मेरे पास जो आ गया। आप ये देखें कि कितना एहसान है इस उम्मत पर, अंदाज़ा लगाएं, वरना कौमें क्या होती, तबाह होती थी। अब उन्हीं फितनों में आके हम इस्तकामत को छोड़ते, यानी वहाँ तक पहुँचा भी दिया अल्लाह पाक ने, जिक्र भी दे दिया, कुछ चलो टूटा फूटा शेख भी दे दिया, तालीमात भी दे दी, और खूब समझने की चीज़ें भी दे दी, पूरा अहतमाम हर चीज़ का कर दिया, हम कबूल नहीं करते। भाई पार आ गए, कभी चले गए, कभी नहीं आए, कभी नींद आ गई, कभी फला हो गया, फला ये हो गया, विदाउट एनी एक्सक्यूज हम इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो उसमें हमारी हिफाजत है, जिसमें हमारे दिन की हिफाजत है, हमारी आखिरत की हिफाजत है। एक कॉल आता है हमें याद, हज़रत गंगवी रहमतुल्लाह बड़ी अजीब बात कही उन्होंने, फरमाते हैं हदीस का मुश्तक होगा डेफिनेटली, हवाला तो नहीं मैंने या मुझे याद, लेकिन जहर है वो बड़े लोग थे तो हदीस के अलावा कोई बात नहीं करते थे। हज़रत गंगवी रहमतुल्लाह कौल है, कहते हैं कि अगर तुम्हारे जिस्म का एक उज्व, वन पार्ट ऑफ योर बॉडी, एक जो उज्व कहते हैं उसको, वो जाकिर हो गया, तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि रोज़े क़यामत में वो हिस्सा जो जिक्र करने वाले पूरे जिस्म को जहन्नुम से बचा देगा, पूरे जिस्म को जहन्नुम से बचा देगा अगर एक हिस्सा जाकिर हो गया कोई भी आपके जिस्म का। हो सकता है आज ही नहीं हो सकता, मुझे बताएं कोई आदमी ऐसा है जो दिल को जाकिर कर दे, है ना या नहीं है? अपने बच्चों के बारे में सोचा, बीवियों के बारे में सोचा, घर के बारे में सोचा, माओं के बारे में सोचा कि भाई इनको हम अल्लाह का जिक्र सिखाएं किस तरीके से, इस इंतजार में रहेगी पहले ठीक होगा और फिर इसको जब मोहब्बत पैदा होगी और फिर इसको ये होगा तो फला होगा, पहले हज करके आएगा तो पहले उम्र, इस चक्कर में कौन आता है? जनाजे रोज उठते हैं, इसमें देर क्या? और जब तक ये देर होगी उस वक्त तक फितने बरसते रहेंगे घर के अंदर। फौरन क्या है कि जैसा भी है तू, जिस हालत में भी है, तौबा कर, अल्लाह कबूल करे, तौबा कर, जिक्र कर, बस करते रहे, तुमने करना देखा जाएंगे तू किस तरह बच सकता है, अल्लाह खुद इलाज करेगा तेरा। कौन सी देर लगती है तौबा कराने में, मुझे बताएं। टेलीफोन ही मिलाना ना, एक वैसे टेलीफोन मिला लो इसको, आप कलमा पढ़ा दें, कर दे दें, कितनी देर लगती है, लेकिन जरूरत नहीं है हमारे, अहमियत ही नहीं है हमारे, पता ही नहीं कि वाकई हम किस किस कदर सख्त मुसीबत के अंदर फंसे। बुखारी की हदीस सुनाई मैंने आप, तब हा कुन सख्त अजाब में हम लोग फंसे हुए हैं, बगैर तो वाकई मैं आपको बता देता हूँ, तबाहकुन बदतरीन अजाबों के अंदर हम फंसे हुए हैं। ये बुखारी की हदीस बताई अनस रज़ी अल्लाह तआला ने, ये तो उस जमाने की बात है, आज का जमाना बहुत दूर हो चुका है। तो हिम्मत करनी चाहिए दोस्तों, आंखें बंद करके जिंदगी ना गुजारें, जिंदगी इसी चीज का नाम है। और फिर इसमें मुजाहिदे की मिसाल दी है अल्लाह के नबी ने, इस्तकामत की मिसाल दी है कि कितना जम जाए इस बात पर, हक समझ आ जाए, ये रास्ता हक का है, समझ आ गया, ये सीधा रास्ता है, बिल्कुल सही रास्ता है, जब ये समझ आ गई बात, अल्लाह ताला कहते हैं उसके बाद क्या करना है, कल आयत ही पढ़ी थी मैंने, उसके बाद क्या करना है, उसकी मिसाल नबी पाक सुन देते हैं। 3 साल कदम कदम पर मिसाल मिलती है, 3 साल आपके ऐसे ही गुजरे शुएब बिन अबी तालिब के अंदर, कि पूरे कुरैश ने सब ने उनसे बायकॉट फरमा दिया था, खाना पीना सब बंद था। एक अजीब हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 30 दिन और रातें मेरी ऐसी गुजरी कि मेरे पास और बलाल के पास कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसको जानदार खा सकता। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, हबीब फख्र मौजूदात इमामुल अंबिया, अल्लाह के हबीब जो कहते हैं कि मैं चाहूं तो पहाड़ सोना बना दे अल्लाह ताला, ए फातिमा ये मुसल्ले से उठाऊं तो तेरी पूरी जमीन सोने की बॉडी बन चुकी हो, वो कहे 30 दिन तक मेरे पास खाने के लिए मेरे और मेरे बलाल के पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसको जानदार खा सके, जानदार यानी जानवर, पत्ता, पत्ते भी नहीं थे कि हम उसको चबा लेते, तमड़ा भी नहीं था, क्यों, इसलिए कि मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उस पर कायम था, और यही मिसाल ये सुन्नत है, बुजुर्गान दीन कहते हैं कि इस्तकामत की ये सुन्नत है हर इंसान को, कि जब दीन पे जम जाए, जिक्र पे आ जाए, तौबा पे आ जाए, तो उसको ये इस्तकामत होनी चाहिए कि जो कुछ भी हो जाए उसको थरथरा के छोड़े ना उसको, तब कामयाब होता है। ये नहीं जी आज मजलिस में आ गए, कल छोड़ दी, जुमेरात में आ गए, फलाह में आ गए, मिलना कुछ नहीं मेरे भाइयों पर, यह हदीस नहीं बताती, ये तमाशा है, ढोंग है, ये इतना सस्ती बात नहीं है, इतना बड़ा मुजाहिदे की बात है, अल्लाह के नबी ने मुजाहिदा करके दिखाया था, मुजाहिदे की मिसाल नहीं मिलती ऐसी, दंग रहती आदमी की याद, कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात, 30 दिन तक आदमी को ना पानी हो पीने के लिए ना कुछ हो, और कोई मदद अल्लाह की तरफ से नहीं कि उनको मिल रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, अल्लाह का खुद कहते हैं कुछ भी नहीं था ना बलाल के पास ना मेरे पास, वो तो नबी थे लेकिन वो तो गुलाम था बलाल, वो कैसे राय करिए, सख्त गर्मी आप सोचे मक्के की, क्या हालात, और किसी वजह से कहते हैं इस्तकामत थी हमारी, इस्तकामत जटे रहे, जब इस्तकामत में हम पास हो गए फिर अल्लाह की मदद उतरती है, तनजुलुल मलाइका अलैहिम मलाइकतु, कहते फिर मदद ऐसी उतरी कि जो मुआहिदा लिखा था उसको चाट गई, फिर ढंग बदल गया सारा ही था। तो इंसान जब मुजाहिदा करता रहता है, इस्तकामत जो रहता है, तो फिर अल्लाह के दरवाजे खुलते हैं रहमतों के इंसान पर। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि राय हक पा जाना, उसके बाद क्या है उस पर जम जाना, और इस वक्त राय हक जो है मैंने बताया फितनों के दौर में सबसे बड़ी दो चीज अल्लाह ने बताई वो क्या है, तौबा और अल्लाह का जिक्र करनी चाहिए दोस्तों, नियत करते हैं सब, बस मजलिस को ना छोड़ें, अपने शेख की सोबत को ना छोड़ें, उसकी बातों को सुने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत समझें इसको, दिल से शुक्रगुजार हों, दिल से शुक्रगुजार हों अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ी नेमत है, हम इसको नहीं समझ सक रहे कि हमें कितनी बलाओं से ये बचा रही है, कितनी फितनों से बचा रही है, और हमें ईमान की हालत से कितना बचा रही है, पता है हम किस हालत में हमारी मौत होती, इस फितने की सबसे बड़ी यही गड़बड़ है, याद रखें वो ईमान से खारिज करता है इंसान को, ईमान से खारिज कर देता है, वो अपने आप को ईमान समझ वाला समझता रहता है, ईमान होता नहीं उसके अंदर, ईमान बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह पाक हमें फितने में बचाए, और ये ऐसी चीज है कि अल्लाह के नबी ने देखें दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी नाऊज़ु बिका मिन अल-फितन, ऐ अल्लाह तू हमें क्या कर फितनों से बचा, कोई बड़ी चीज हुई ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ु बिका मिन अल-फितन मा ज़हरा मिन्ना मन पतन, ये बता दिए दो किस्म के फितने होंगे, एक तो जाहिर से आ रहे होंगे और एक अंदर से आ रहे होंगे। अल्लाह बताए कितना कितनी मुश्किल में फंसा है इंसान, और प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं। प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है? नींद, फला बकवास, ये बकवास, ये दुनिया, ये दुकान, ये प्रोटेक्शन है हमारी, ये कारोबार, ये चीजें, ये प्रोटेक्शन है। और अल्लाह के नबी कितनी बड़ी दुआ फरमा रहे हैं, वो खातिब होकर कह रहे हैं क्या लोगों, जब ये वक्त आ जाए जिस वक्त आसमान जमीन से फितने टूटने लगे, इमाम मेहदी का जमाना पहुंच चुका हो, तो तुम ये दुआ मांगनी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ बिका मिन फतन मा ज़हरा मिन्हा मा बतन। इतनी बड़ी चीज है, अल्लाह के नबी सुन्नत शात फरमाए, अल्लाह हमें एहसास दे इस चीज़ का।